بابا نے کل کہا تھا تمہاری ہر بات روحانی ہے، کل کی مرلی میں کہا تھا نا تمہاری ہر بات روحانی ہے، تو ہماری ہر بات روحانی ہو، الوکک ہو، سادھارن نہ ہو. وہ کب ہوگی؟ جب ہم روحانی نشے میں رہیں گے، الوکک نشے میں رہیں گے، نارائنی نشے میں رہیں گے، الہی مستی میں رہیں گے، مولائی مستی میں رہیں گے. الپکال کا نشہ نہیں، نقصان والا نشہ نہیں، یہ روحانی نشہ حد کے نشوں کو سماپت کر دیتا ہے. حد کے نشے تو انیک پرکار کے، اور روحانی نشہ ایک میں باپ کا باپ میرا، یہ روحانی نشہ ہے، یہ ہے روحانی نشہ. یہ ایک پیار سروتم پیار ہے، اس پیار کے آگے سنسار کے سارے پیار پھیکے ہیں، نیرس ہے. آج بابا نے کہا تم نے وہ بھی انوبھو کر کے دیکھ لیے، ایک باپ کا ہی پیار نسوارتھ ہے اور اویناشی ہے، باقی سارے پیار الپکال کے ہیں. باپ کا بن گیا یہ روحانی نشہ، تو یہ روحانی نشہ سدا رہتا ہے. یوگ کوئی ایک کریا نہیں ہے، یہ ایک اوستھا ہے، بیٹھی بیٹھی کرنے والی کوئی کریا نہیں ہے، یا پھر چلتے چلتے کرنے والی کریا نہیں ہے، یہ ایک اوستھا ہے. آتما ابھیمانی استھتی ایک اوستھا ہے. کتنا سمے بیٹھ کر کون کتنا کر رہا ہے، یا چل پھر کر کون کر رہا ہے، یہ اس سے کوئی اس کا سمبندھ نہیں ہے، یہ ایک اوستھا ہے آتما کی. جو کہ رات میں 2 بجے بھی اگر اٹھ گئے تو یاد آئے کہ کون ہوں میں، پہلا ہی سنکلپ. ایسی ہماری آتما ابھیمانی استھتی پکی کرنی ہے. تو سارا پرشارتھ ہی آتما سمجھنے کا ہے، اور دوسرا پورا دیہ نہیں سمجھنے کا. جیسے سوکھا ناریل ہوتا ہے نا، پہلے گیلا ناریل، ایک ہے سوکھا ناریل ایک ہے گیلا. گیلا کیسا ہوتا ہے؟ جس میں وہ دونوں ایک ہوتے ہیں، اندر کا اور، پر جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کو آپ ایسے سے ہلا سکتے ہو، اندر کا الگ باہر کا الگ. تو ایسا انوبھو ہو کہ یہ الگ اور وہ الگ، وہ سمپورن سٹیج کی نشانی ہے کہ دو بھن بھن نظر آئے. تو بابا کہتے ہیں وہ بھی ایک سمان، باپ کا بن گیا یہ روحانی نشہ ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں، الگ الگ. سوکھا ناریل کو جب ہلاؤ آپ تو وہ الگ وہ الگ. یہ اترنا چڑھنا، کبھی زیادہ چڑھنا کبھی کم کر چڑھنا. اگر کوئی راجہ ہو، تخت بھی ہو، لیکن تخت کا راجائی کا نشہ نہیں ہو تو وہ راجا بنا نشہ کے راجیہ کیسے چلے گا کرے گا. اگر آتما روحانی نشے میں نہیں تو سوراجیہ کیسے کر سکے گی، راجیہ میں ہلچل ہوگی. دیکھو پرجا کا پرجا پر راجیہ ہے تو ہلچل ہے. اگر آتما سوراجیہ کے نشے میں نہیں تو کیا ہو جائے گا، پرجا کا پرجا پر راجیہ ہو جائے گا. یہ کرمیندری ہی راجیہ کرتی ہے، تو پرجا کا راجیہ ہوا نا، اس کا نتیجہ ہوگا ہلچل. تو سدا تخت نشین آتما کا روحانی نشہ رکھو، ایسا شریشٹھ. باپ کے دل کا تخت سارے کلپ میں نہیں مل سکتا. ابھی بابا دوسرا تخت ہے دل تخت. دل تخت نشین کون بنیں گے؟ جو آگیاکاری ہے، جو فالو فدر کرنے والے، اور جو وفادار ہے، فرمان بردار ہے، اور نشچے بدھی ہے، اور ایماندار ہو گیا. جو اکال تخت پر ہے وہی دل تخت پر ہے. اکال تخت میں بیٹھتے ہی سب کچھ ستائی ہوتے جائے گا. اکال تخت پر بیٹھی ہوئی آتما کبھی شریمت کا الگھن نہیں کرے گی، چھوٹی چھوٹی اوگیا ہے اس سے نہیں ہوگی. آتما ابھیمانی استھتی میں کیے جانے والے کرم ستا ہی شریشٹھ ہوتے ہیں. جہاں جہاں دیہ ابھیمان آیا وہ کرم نیچے چلے جاتے ہیں. آتما ابھیمانی استھتی میں پوچھے ہوئے پرشن ہی شریشٹھ پرشن ہوتے ہیں. جو آتما کی گہرائی سے نکلتے ایسے جو پرشن ہیں وہ شریشٹھ پرشن ہوتے ہیں، ان کے اتر ملتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا دادیوں کے کلاس میں کئی لوگ پرشن پوچھتے ہیں، پرشن پوچھنے والوں کو پرشن اتنا مولیوان نہیں ہے، مولیوان ہے میرا پرشن. इसके लिए क्लास पूरा होने के बाद दादी को पूछते, आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वो प्रश्न उतना मूल्यवान नहीं था, परंतु मेरा प्रश्न ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। बाकी हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर तो किसी और के प्रश्न के उत्तर में भी समाहित था, पर वो हम नहीं देख रहे। हमें क्या महत्वपूर्ण है? मेरा। तो ये सुनते समय भी हमारे मन में अगर कोई प्रश्न है, उसे पूछने की बजाय सुनाने वाला कुछ और सुना रहा है, उसी में हमारा प्रश्न है। कई प्रश्न पूछते हैं और हमारे प्रश्न भी उधार होते हैं, उधार लिए हुए प्रश्न।
क्या पूछना है?
हमारे अपने अंदर से निकले हुए प्रश्न नहीं होते, हमें वो इतनी जिज्ञासा नहीं है कि उस प्रश्न का उत्तर करो। कई लोग आते पूछते पुरुषार्थ कैसे करें, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की विधि बताओ 18 जनवरी के लिए। उनके साथ 10-15 मिनट बैठो और उनके जीवन के बारे में पूछो। 15-20 मिनट बैठने के बाद ऐसा पता चलता है उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है पुरुषार्थ से, ये तो ऐसे ही पूछ रहा है। जीवन में तो कुछ और ही चालू है, केवल पुरुषार्थ के लिए कोई दिखा अच्छा पुरुषार्थी तो उससे पूछ रहे कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की विधि बताओ, स्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाओ। सारे प्रश्न भी उधार लिए हुए और प्रश्न पूछ रहे इसके लिए पूछ रहे कि मैंने पूछा, मेरा प्रश्न। वहां देह अभिमान है, नहीं तो आत्मा के सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही उसको मिल जाएगा, जैसे ही वो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएगी। पुरुषार्थ की लगन भी है, वो तो है, परंतु वो प्रश्न कितनी अंतरतम से आ रहा है, कितनी गहराई से आ रहा है। बाबा ने सभी प्रश्नों के सभी उत्तर बाबा दे चुका है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर देना भी बाकी है। खाली आपने एडमिशन लिया है, कब? जून में एडमिशन लिया, क्लास चालू हुई है जनवरी में, और फिर आप पूछते हो इसका प्रश्न क्या, उसका उत्तर क्या, इसका उत्तर क्या, पुरुषार्थ कैसे करें, श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनाए। आपने एडमिशन लेट लिया है इस विश्वविद्यालय में, तो आपको 69 से जो कुछ उसने कहा है, अव्यक्त का ले लो, खाली साकार तो छोड़ दो, 69 से उसने जो कुछ कहा है वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन मनन पठन पाठन सब कुछ करना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा एकांत में जाकर मनन करो, जो आनंद योग में है वो ज्ञान के चिंतन में भी वही आनंद है। आत्मा योग के पीछे लगी है और सेवाओं के पीछे लगी है और उसी से अपनी स्थिति को बनाना चाहती है, परंतु वो संपूर्ण मार्ग नहीं है। बाबा ने ज्ञान को भी उतना ही महत्व दिया है। निरंतर अगर बुद्धि में ज्ञान है तो चलते फिरते भी आत्माभिमानी स्थिति रह सकती है। केवल जब पांडव भवन में आ रहे और बाबा के कमरे में जा रहे तब आत्माभिमानी स्थिति, और जैसे ही गेट से बाहर वैसे देह अभिमान की बातें। आज बाबा ने कहा ना, देह अभिमान की बातें, व्यर्थ बातें, अनर्गल बातें, विस्तार की बातें, इन सब में नहीं जाना है तुमको। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात एकांत, तो वो निरंतर अवस्था वो हमारी। तो बाबा कहते हैं जो बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा। अभी बाबा देखो कितनी सारी बातें सुना रहा है कि जिस जो दिल तख्त नशीन है उसको क्या क्या हो जाता है, उसके आगे कोई विघ्न कोई समस्या नहीं आ सकती। अगर वास्तव में वैसा है तो न प्रकृति वार कर सकती है न माया वार कर सकती है। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत माया जीत। कोई विकार का संकल्प नहीं, कोई विकार की टचिंग नहीं, कोई देह की आकर्षण नहीं। ऐसी अवस्था हो सकती है अगर आत्माभिमानी स्थिति है और परमात्मा तख्त नशीन स्थिति है। तो ऐसे प्रकृति जीत माया जीत बने हो, प्रकृति भी हलचल में लाती है। प्रकृति की हलचल ब्राह्मण आत्माओं को हिला देती है, तो हलचल नहीं होनी चाहिए। तख्त नशीन नहीं है तो हलचल में आते हैं, अगर तख्त नशीन हो तो किसकी हिम्मत नहीं हलचल में लाए। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में है तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमको हिलाए, पर दिन भर से शाम तक कितनी बातें हिलाती है, किसी के बोल हिलाते हैं, किसी का व्यवहार हमको हिला देता है। थोड़ी सी कोई बीमारी हुई तो हिल जाती है आत्मा पूरा। हजार संकल्प चलते हैं, कौन मुझे देखेगा, मेरा क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। बड़े बड़े योगी जो दिन रात योग करते हैं उनकी भी स्थिति हिल जाती है, क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन और ज्ञान से अपनी स्थिति को शक्तिशाली नहीं बनाया है। तो दोनों चाहिए, ज्ञान और योग। तो हलचल में आना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हो जाता है। तो परवश हो गए ना, बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते तो बंध जाते। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो, मुक्त कब होंगे? जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, यह है संगम युग की जीवन मुक्ति। यही मुक्त होना है सारे बंधनों से, सारी परवशता से, सारी गुलामी से। कल भी कहा था ना, भविष्य में जीवन मुक्ति और जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, लेकिन इस समय तो समझते हो ना कि जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। आत्मा में रहते ही आत्मा शरीर में नहीं है, ये अनुभव करना है। आत्मा में रहते ही आत्मा परम धाम में है, ये अनुभव करना है। आत्मा में रहते ही आत्मा सतयुग में है, ये अनुभव करना है। आत्मा में रहते ही आत्मा मंदिरों में जो जड़ मूर्ति है और जिसकी पूजा हो रही है, वो अनुभव करना है। आत्मा में शरीर में रहते, आत्मा कहा शरीर में रहते ही फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करना है।
आत्मा में ही रहते,
आत्मा में भी रहते और आत्मा का ही अनुभव करना है। आत्मा से आत्मा का अनुभव करना है। मैं आत्मा, मुझी को जानना है। सारा जो अध्यात्म है वो इसी के लिए है। ये सबसे पहला हमारा चैप्टर है, इसी को अभी तक पक्का नहीं किया है। अभी तक भी देह खींचता है। इसी शरीर में रहते हुए पांचों स्वरूप का अभ्यास, ये हमारी मंजिल है। जीवन है में है लेकिन मुक्त है। कल परसों का अभ्यास बाबा ने बताया था ना, एक सेकंड में शरीर में आना और शरीर से निकल जाना। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार प्राप्त किया है या जब परमधाम में जाएंगे तभी प्राप्त करेंगे? वहां तो पता ही नहीं पड़ेगा मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव तो अभी है, अनुभवी हो ना। सभी ने जीवन मुक्त का अनुभव किया है, जो सतयुग में जाएंगे तब करेंगे। ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है? किसी ने कहा हो सकता है, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने पूछा जीवन मुक्ति, ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है? किसी ने कहा हो सकता है, तो बाबा ने कहा तो होता है। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि जब आपकी रचना, कौन है हमारी रचना? कमल पुष्प क्या करता है कि विशेषता है न्यारा रहता है, जल में रहता है पर जल के बंधन से मुक्त रहता है। तो मनुष्य आत्मा रचता है और वह रचना है। तो रचना में यह विशेषता है और आप मास्टर रचना में, रचता में नहीं। भगवान को आश्चर्य लग रहा है,
अपनी शक्ति रचना
है ना। कभी भी बंधन मुक्त के बजाय अगर बंधन युक्त हो जाते, बंधन में फंस जाओ, तो आपके सामने क्या करो, आपकी जो रचना है कमल पुष्प का दृष्टांत जो है, जो न्यारा प्यारा रहता है, उसको सामने लाओ। तो सदा बन जाएंगे, थोड़ा टाइम बनते हैं, थोड़ा टाइम नहीं बनते, इसमें मजा नहीं है। कभी बंधन, कभी बंधन मुक्त, ये अच्छा लगता है। तो जो चीज अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देना चाहिए या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। तो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है, न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनो, सदा तख्त नशीन आत्मा बन, जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। यह जीवन मुक्ति की सदा स्थिति बहुत प्यारी है। तो आज अभ्यास क्या करना है? अकाल तख्त पर बैठने का अभ्यास करना है और दूसरों को भी अकाल तख्त पर बैठा हुआ देखना है। और आत्मा के जितने उसकी जो वास्तविकता है वो सारों का चिंतन करना है। आत्मा के सारे गुणों का चिंतन करते रहना है, आत्मा के स्वमान का चिंतन करते रहना है। ये तीन बातें हैं। इस तीन को करते रहेंगे तो स्वतः ही दिल तक नशीन बनेंगे और स्थिति एक ही दिन में कहां से कहां ऊपर। ओम शांति।